नारायण नारायण नारायण। अब बोलो, मेरी बात मन में आती हो, कोई खटकती हो, जैसे कोई कांटा खटकता हो, ऐसे कोई अपने जीवन में मार्मिक बात खटकती हो, वो बोलो। तमाशा खेल में
संकल्प और स्फुरणा में प्रारब्ध और संचित कर्म का हाथ है क्या, ये स्वतंत्र
है? पूर्णा में तो वर्तमान में अभी हमने देखा है, सुना है, पढ़ा है, विचार किया है, ये कारण है खास। पुरानी पूर्णा कम होती है, वर्तमान की पूर्णा ज्यादा होती है। जो हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है अभी, इसकी पूर्णा ज्यादा होती है। और जो संकल्प होता है वो होता है भीतर में आसक्ति रहती है सूक्ष्म, उस आसक्ति से। और पूर्णा वो संकल्प को अपने मिटाने का संकल्प करते हैं, उससे संकल्प दुगुने होते हैं। हम मिटाना संकल्प कराना में ये याद नहीं करना है, चित्त को शुद्ध करना है, संकल्प कर मिट जाए, इसके कारण से पहले बात तो मिटता नहीं, नया एक संकल्प और पैदा होता है, इस वास्ते संकल्प मिटना मुश्किल हो जाता है। ये अटकल आती नहीं। मन को एकाग्र करने के लिए वर्ष लग गए, फिर भी वो एकाग्रता नहीं, चित्त से देता है। कारण क्या, दूसरी बात करते हैं, वो संकल्प एक नया और पैदा होता है, वो तो वही नहीं, नष्ट दूसरे में और पैदा होगा। उपाय करोगे उसका संकल्प और होगा पैदा, इस बात चित्त जल्दी काबू में नहीं आता। मन को एकाग्र करने की युक्ति आई नहीं है। और कहते हैं मन संचल प्रश्न होता नहीं है, अरे करना आता नहीं, करने की विद्या याद नहीं, स्वयं तो जानते नहीं, दूसरे मन से नहीं, तो उसे क्या याद करे? कुछ जानकार बतावे तो उसे तो मानते नहीं, और स्वयं जानते नहीं, और जो करते हैं क्यों अलग अलग ऊर्जा है। कुछ समझे देखते हैं कि न खोल न सारा ग्रंथ सीखो, तो अलग अलग ज्यादा ज्यादा है, क्योंकि नया नया संकल्प होता है, नया विचार करता है, तो नया संकल्प और पैदा होता है, वो तो मिटता ही नहीं, नया संकल्प और पैदा हो जाता है, हम मिटेगा जन्म लग जाए कई तो भी नहीं मिटेगा।
प्रश्न था कि उसमें प्रारब्ध और संचित का हाथ है क्या?
संचित का हाथ है, संचित का हाथ है, प्रारब्ध का ही हाथ है, उन दोनों का विश्लेषण आदमी नहीं कर सकता। अलग अलग ये तो संचित का है, ये प्रारब्ध का है, ऐसा नहीं कर सकता। उसमें पूर्णा में तो मैंने बताया कि प्राय करके वर्तमान की परिस्थिति की ही पूर्णा होती है, इसमें प्राय ये है। अब संकल्प पैदा होता है उसमें पुराने भी होती है, नई भी होती है, उसमें प्रारब्ध का भी होता है, संचित का भी होता है। संचित है उसकी संकल्प तो होगा, पर संचित का संकल्प तंग नहीं करेगा, प्रारब्ध का संकल्प है वो तंग करेगा, उसके अनुसार काम करना पड़ेगा आपको। वो होते हैं तो तीन तरह के होते हैं, एक प्रारब्ध का संकल्प होता है, उसमें तीन तरह की होती है। एक तो परमात्मा का हाथ होता है, एक अपने संचित का हाथ, एक प्रारब्ध का हाथ होता है। प्रारब्ध का हाथ होता है वो तीन तरह से आता है, स्वेच्छा, परेच्छा और अनिच्छा। स्वेच्छा से आता है, परेच्छा से आता है और अनिच्छा से आता है, तीन भेद होते हैं। जैसे आपने व्यापार किया और व्यापार की आपके मन में आई, तो व्यापार की जो मन में आई है वो स्वेच्छा से भी आती है, परेच्छा से भी आती है, अनिच्छा से भी आती है। तो उसमें अब कौन सी है ये इच्छा, इसमें जल्दी से पता नहीं लगता है, गहरा विचार करें तो पता लगता है। तो प्रारब्ध के अनुसार आपके होगा तो ऐसी जबरदस्त होगी, जोर से, जो आप किसी की मानोगे नहीं। जैसे कोई आदमी बेचता है, आप ध्यान दो कि बाजार में एक आदमी अपना माल बेचता है, तो बेचने वाले के ऐसी मन में आती है अब ये माल निकल जाए तो बड़ा अच्छा है, अच्छा मौका है। तो वह तो मन में ऐसी है कि इसका भाव गिरेगा, और लेने वाले के मन में आती है कि ये वस्तु तेज होगी, इस वास्ते अभी ले लो तो फायदा होगा। अब दो तरह की मन में फुरना हुई, तो घाटा लगना है वो जल्दी बेचेगा, नफा होने का है वो जल्दी खरीदेगा। तो नफा होना न होना प्रारब्ध के अधीन है, अब अपनी युक्ति और अपनी बुद्धिमानी के अधीन नहीं है। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विज्ञान से कौरुषम, तो वो जो पूर्ण प्रारब्ध की हुई वो घाटा लगना है, इस बार से मन में आई कि खरीदू, अरे खरीदे घाटा लग जाएगा, तो वह जोरदार होगी मन में, उसको जल्दी मिटा नहीं सकता आदमी। जो प्रारब्ध का भोग होना है, आपके नुकसान होना है, तो वो प्रारब्ध की होती है। और संसद की फुरना ज्यादा संसद की होती है, प्रारब्ध की कम होती है। उन संसद के फुरना को मिटा दो, मिट जाएगा। उसमें संग, स्वाध्याय और विचार, ये तीन काम करते हैं। संग जैसा मिलेगा वैसी सहायता से वो काम हो जाएगा, और शास्त्र मिल जाएगा तो वैसे हो जाएगा, और विचार करोगे ये ठीक है तो वैसे हो जाएगा। ये उसमें मददगार है, बाधक है। संग अच्छा होगा तो बुरी फुरना है वो रुक जाएगी। संग अच्छा होगा, स्वाध्याय अच्छा होगा, विचार अच्छा होगा, उद्देश्य अपना अच्छा होगा, तो बुरी बातें पैदा होगी, मिट जाएगी। और कुसंग मिलेगा तो अच्छी बातों में धक्का लगेगा, अच्छी बातों का पूर्ण मिटेगा नहीं, अच्छी बात रुक जाती है, बुरी मिट जाती है, इन दोनों में फर्क है। ये अच्छा काम करने की मन में आती है, और कुसंग मिल जाएगा तो अच्छी बात करने की जो अभी मदद नहीं मिलेगी तो रुक जाएगी, पर वो मिटेगी नहीं। क्यों? अच्छी है वो भगवान के साथ संबंध रखती है, और भगवान के साथ संबंध रहती है उसमें सत रहता है पहले, तो उसका नाश नहीं होता, सत का नाश नहीं होता। और खराब काम है वो असत है, तो अच्छा संग मिल जाएगा, अच्छा शास्त्र मिल जाएगा, अच्छा विचार मिल जाएगा तो वो मिट जाएगा। तो अच्छा संग करो, अच्छे शास्त्र देखो, अच्छा विचार करो, ये आपके वर्तमान के साथ संबंध है। ऐसा करने से अच्छा करने की बात को मदद मिलेगी। तो अच्छी जो शुद्ध फुरना है और हितकारक फुरना है वो संकल्प बन जाएगा। वैसे ही मतलब ऐसे ही करना है अपने, इसलिए से अपने जीवन चलना है। तो संग से बहुत लाभ होता है, सत्संग से, ऐसे कुसंग से नुकसान बहुत होता है। वो अच्छी बातों को टिकने नहीं देगा कुसंग, पर अच्छी मिटेगी नहीं उस सूर के बाद फिर याद आएगी। अरे कुसंग की खराब बात वो मिट जाती है, वो नाशवान है, उसमें शक्ति नहीं है, खुद में आपकी दी हुई ताकत है। और अच्छी बोलना है वो उसमें खुद में ताकत है, तो भगवत संबंधी बात है, सत्कार से उसमें। तो स्वेच्छा प्रार्थ है, उसे मन में आएगी कि ये चीज खरीदो, नफा हो जाएगा, तो वो क्या हुआ कि प्रार्थ तो आपका उनसे पैदा होगा, मन स्वेच्छाकृत हुआ। ये एक परिच्छाकृत होता है, किसी ने गोद ले लिया, उसके मन में है ही नहीं, मन मेरे गोद ले लिया, धनी बना दिया, तो धनी बना तो अपने प्रारब्ध से है, पर वो प्रारब्ध भोग हुआ है स्वेच्छा, अनिच्छा, परिच्छा पूर्वक। दूसरे की इच्छा से हो जाए, उसको वो नहीं ले तो आप नहीं हो सकते। धनी आदमी गोद लेगा तब वो गोद आएगा, वो कहते हैं मैं धनी की गोद चले जाऊं उसके हाथ से नहीं होगा। ये परीक्षा प्राप्त है प्राप्त उसमें भी, वो लखपति बन गया तो वो बनने में प्राप्त है, परंतु ये परीक्षा प्राप्त है। एक अनिच्छा प्राप्त है, कहीं बाढ़ आया नदी बढ़ी और नदी नीचे उतर गई, अब उसमें रह गया कोई धन का स्वरूप मिल गया, तो ये अनिच्छा है, ना आपकी इच्छा है ना परीक्षा है प्राप्त लोगों की प्राप्त से ही मिलेगा, परंतु प्राप्त परीक्षा पूर्व प्राप्त होता है, अनिच्छा पूर्व प्राप्त होता है। और ईश्वर इच्छा से कह दो, अनिच्छा कह दो, ईश्वर इच्छा कह दो, उससे प्राप्त होता है। ऐसे नुकसान होने वाला है वो स्वेच्छा पूर्वक काम करो नुकसान हो जाएगा, व्यापार करते हो ठीक नहीं हो जाएगा घाटा, तो स्वेच्छा पूर्वक हुआ है। ऐसे परीक्षा से हो जाएगा, कोई आकर मारेगा आपको लाठी मार दी तो बस आपको जो पीड़ा होने वाली है, बन परीक्षा पूर्व पूर्ति हुई है। एक अनिच्छा पूर्व वृक्ष नीचे जाए, वृक्ष गिर गया आपको चोट लग गई, ना स्वेच्छा है ना अनिच्छा है, परीक्षा है अनिच्छा है, इस इच्छा से हो गया। इस प्राप्त का भोग स्वेच्छा पूर्व अनिच्छा पूर्व प्राप्त, ऐसे प्राप्त का भोग होता है। तो प्रार्थ वाली फूलना होती है, उसके ये फल होता है, उसका अच्छा मंदा कर्म करते हैं, और कर्म करते वो नया कर्म बनता है, वो कर्म एक नया बनता है जो आगे फल देगा। कर्मों की बड़ी गहरी गति है, कर्मों का विशेष विवरण नहीं आता है पुस्तकों में, बहुत कम आता है। ज्ञान की भक्ति की बातें बहुत आती है, पर कर्म की बातें पुस्तकों में बहुत कम मिलती है। अपने 18वें अध्याय के 12वें श्लोक पर इसकी कुछ विस्तृत व्याख्या करी है, 18वें अध्याय के 12वें श्लोक पर। अनिष्टम इष्टम मिष्टम च त्रिविधं कर्मणः फलम्, कर्म का फल तीन तरह होता है, अनिष्ट इष्ट और मिष्ट। हम चाहे जो फल होता है, नहीं चाहे जो होता है, जो कुछ कुछ चाहते कुछ नहीं चाहते मिला हुआ, ऐसे तीन प्रकार का फल होता है। तो ये बहुत ही अत्यागी नाम, जो त्यागी नहीं है उनको होता है, न तो सन्यासी नाम को त्यागी होते ही नहीं, किसी को कुछ फर्क असर करता ही नहीं, हो गया बह गया चला गया, कोई परवाह नहीं। इसके बाद में तीन हेतु बताए, पांच श्लोक है, पांच पांच श्लोकों का प्रकरण है यहाँ, पंचित से हेतु अधिष्ठान करता करने से ले जाऊँ ऐसा। तो प्रारंभ के अनुसार पूर्ण वो होती है जो नफा नुकसान होने वाला है, और स्वेच्छा पूर्वक करो अनिच्छा पूर्वक करो परीक्षा पूर्वक करो, ये प्राप्त होता है, वो प्राप्त की पूर्णा होती है। वो और संसद की पूर्णा है, वो आपको काम करने के लिए बाध्य नहीं करती, और प्राप्त की पूर्णा वो बाध्य करेगी, जोर लगाएगी मत करो जैसा तो मत करूंगा, वो करने के लिए बाध्य करेगी। और संसद की पूर्णा हो गई, याद आ गई, आप करो तो करो न करो न करो, वो बात ही नहीं करेगी। तो संसद पूर्ण होती है, वो होता है फूर्णा की तरह, वो संकल्प इतना नहीं बढ़ता जोरदार, प्रावधान तोड़ देता है। तो संसद का हाथ रहता है, प्रावध का भी हाथ रहता है, पर संसद की कौन सी है फूर्णा और प्रावध की कौन सी फूर्णा है, तो प्रावध की फूर्णा को संकल्प हो जाता है। तो इन दोनों का विश्लेषण पहले नहीं कर सकते, परिणाम में पता लगता है, होना जब नफा नुकसान हो जाता है तब पता लगता है ये प्रार्थी होना थी, परंतु उस समय दोनों अलग मिल जाती है, दोनों विश्लेषण करना अलग अलग करना कठिन होता है, साथ ही जल्दी नहीं कर सकते। ये बात इस वास्ते मनुष्य को तस्मात शास्त्र प्रमाणन से कार्याकार्य कर्तव्य और अकर्तव्य शास्त्र को अगर रखे, संत महात्माओं की वाणी को सिद्धांत को अगर रखे उसको सामने रखकर करे, पर मनुष्य करते हैं राग द्वेष को अगर रख करके, प्राय मनुष्य काम करते हैं राग पूर्व को ग्रहण करते हैं, द्वेष को त्याग करते हैं, तुम आदमी अच्छे नहीं हो सर अटो जाते, तो द्वेष पूर्व त्याग हुआ, तो द्वेष अभी हुआ है, त्याग किया है, इसका त्याग का फल अच्छा नहीं होगा। दुख में थे व्यत कर्मा काय क्लेश भया त्यजेत सकृत व राजसम त्याग नहीं, वो त्याग फल मिलेगा, त्याग बाद में शांति होती वो नहीं मिलेगी, और मोहात्मी मिलेगी तामस है उससे भी नहीं मिलेगी। कार्य में त्याग करना जरूरी है, और फल और राशि त्याग सात्विक त्याग होता है, उसमें उद्धार होता है, आदमी का कल्याण होता है, अनुभव मार्ग बढ़िया होता है। तो ऐसे पूर्णा होती है, संकल्प होता है, उसमें संचित का, क्रियमान का, प्रारब्ध का, तीनों का हाथ रहता है। पर विशेष करके पूर्णा में तो प्रारब्ध अभी प्रारंभ काम कर रहे हैं, ये अभाव का वर्तमान की ज्यादा है, और प्रारब्ध की स्वेच्छा आने पूर्व में आप स्वेच्छा पूर्व कर्म करते हैं, उसमें प्रारब्ध का अर्थ होता है। तो वो कर्म करने में संकल्प पैदा होगा, वो प्रारब्ध स्वरूप होगा। तो इन प्रारब्ध संचित करता है क्रियमान, यानी कहा रहता है। तो आपका प्रश्न सही हाथ रहता है क्या? तो रहता है, इतना उत्तर होता है इसका। कैसे कैसे रहता है थोड़ा सा विवेचन कर दिया। अब शंका करो और बताए, आपके जो शंका अटकती हो, खटकती हो, पूछो। गाना कर्मणो गति किम कर्म किम अकर्मे थी कवियों प्यत्र मोहिता। ये चौथे अध्याय में 16 से 32 तक श्लोक है, उनमें कर्मों का वर्णन है। विशेष करके 5 श्लोक है, 18, 19, 20, 21, 22, 23 श्लोक सुनो, 3 श्लोक, 6 श्लोक है, इसमें इसका वर्णन है। इसलिए कर्मणि अकर्म ये 18 श्लोक है। कर्मणि अकर्म, कर्म में अकर्म देखता, अकर्म अकर्म देखता, बुद्धिमान मनुष्यों में योगी और संपूर्ण कर्म करने वाला है, ये उसका अर्थ है। तो इसके अर्थ आज 9 प्रकार से हमारे देखे हुए हैं। हमने देखा वो एक तरह से लिखा साधक संजीवनी में, वो बहुत विचार पूर्व लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी हरेक वो पहुंचता नहीं है। वर्षों के अध्ययन से जो प्राप्ति वो चीज लिखी है। ऐसे गीता का संबंध हमारा सम्मत 1972 से है, गीता का पहले पहले कहते सूर्य को क्या सिखावे, संस्कृत सिखाओ, संस्कृत न तद भाषित है सूर्य न शशांको न पावक यदि न निवर्तन तद धाम, ये सोच चुका पहले कैसी योग्यता है संस्कृत पढ़ाने पढ़ने में। तो पहले ये श्लोक सीखा पहले ही पहले, इसके बाद समझ उपावली और तो गीता के संबंध पहले से वो भगवान की कृपा है तब से है और अभी तक चलता है। और अभी तक गीता में नए नए भाव मिलते हैं, नए नए विचित्र विचित्र भाव मिलते हैं, बड़े लोगों को भाव मिलते हैं। तो कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म देखना है, वो बुद्धिमान है, योगी है, वो संपूर्ण कर्म करने वाला है। तो कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म देखना क्या है? अगले 5 श्लोक है, 19, 20, 21, 22, 23 5 श्लोक है, ये 18 श्लोक है। इसकी व्याख्या करी 5 श्लोकों में। टीकाकरणों में कई तरह के संस्कृत टीकाओं में कई अर्थ आए, एक अर्थ आए। तो अपने साधक संजीव ने लिखा है, ये अर्थ किसी टीका में मैंने देखा नहीं है। हिंदी की संस्कृत टीका देखी है, संस्कृत टीका देखने वालों की मैंने टीका देखी है, तो किसी ने इसके लिए विवेचन नहीं किया है। कर्म अकर्म विकर्म क्या है, और विकर्म का नाम एक बार ही है, कर्मणो बोधव्य विकर्म अकर्म बोधव्य 17 श्लोक में, तीनों का नाम एक बार आया है, फिर विकर्म की चर्चा ही नहीं आई है कहीं भी, कर्म और अकर्म की आई है। तो इसका जल्दी जल्दी कह रहा समझना बड़े मुश्किल। अपने गए थे नागपुर, तो वहां पर मैंने आहार की बात छेड़ी, तो आहार की बात में लोग चिढ़ गए, वो कि और आप समझ नहीं सकोगा, अकर्म अकर्म की बात सुन लेगा आप अकल में नहीं आएगी, समझ नहीं सकोगे आप, समझाओ क्या, समझे क्या हो, मैं समझाऊं तो नहीं समझोगे। आहार में महाराज दूसरों का धन है, आहार में आहार मीमांसा है, विचार ये आहार मीमांसा बिल्कुल नहीं है, आहार की मीमांसा है ही नहीं गीता भर में कहीं भी, आहार ही की है, आहार करने वाले की है, आहार की मीमांसा है ही नहीं, कहीं नहीं है गीता में। अच्छे जानने वाले बताओ, शंका करो, आज सामने रखा आप लोगों के सामने रख देते हैं, बस गीता पढ़ कर रहा हूं, आहारी की मीमांसा, आहारी की हार करने वाले की मीमांसा है, आहार सर्वस्य त्रिविदो भवति प्रिय, ये क्यों लिखा है? ये शास्त्र बुद्धि मुत्सृज्यजंते श्रद्धया निषा ते सा निष्ठा, तो कहा कृष्ण उनकी निष्ठा कौन सी है? सत्वम अहो सात्विक है तो राजस्थान से है, सात्विक देवी संपत्ति, राजस्थान की आधुनिक संपत्ति, पीछे सूर्य मध्यम जो भी संपत्ति का वर्णन है उसकी निष्ठा कौन सी होगी? तो भगवान क्या त्रिविधा होती श्रद्धा, तीन प्रकार की श्रद्धा होती है, सात्विक राजसी और तामसी, वो सत्व के अनुसार अंतर्गण अनुसार होती है। और यजंते का बताया कि यजंते सात्व का देवान और यक्षरक्षण से राजसा प्रेतान भूतगणा से जैन तामस, ये सात्विक पैसा है कि कोई पूजा करता ही नहीं तो पैसा गया था, पूजा करोगे तो पहचान होगी, देवताओं को पूजा करता सात्विक है, यक्ष राक्षण करता राजसी है, अर्पित भूतपूर्ण पूजा करना तामसी है, तो पूजा करता है उसकी तो पहचान होगी, मैंने पूजा नहीं करता तो भगवान क्या आहार है तो भी रोटी तो खाता है कि नहीं, उस खाने से पहचान हो जाएगी मेरी, तो सात्विक है राजसी है तामसी है, वो खाने से नहीं उसकी रुचि से है। आहार तो सर्वस्व त्रिविद बहुत ही प्रिय, तो ये मिल जाए आपकी बात थोड़ी है, रुचि होती है तो रुचि होती है उससे पहचान हो गए सात्विक आदमी है कि राजस आदमी है कि तामस आदमी है, तामसी परीक्षा के लिए है, नहीं आर सुरक्षित तो बहुत ही प्रिय क्यों कहता, ऐसे ही सात्विक प्रिय राजस से तामस प्रिय सब जगह चार जगह प्रिय सब दिया, क्योंकि नहीं देखे भगवान नहीं बोलता आहार की प्रसन्न आएगा, आहार की है ही नहीं, आहार ही की है, ऐसे जाते महाराज से अच्छे अच्छे, तो इनके अब कर्म और अकर्म विकर्म को छोड़ दे तो कौन समझेगा, अध्ययन करते ही नहीं गहरे उतर कर गए, और अध्ययन करते उनके सुनते नहीं, अपने मन से विरुद्ध बात घुसाया जाता है, अब सब तुम्हारे अनुकूल कैसे बोलेंगे, तो इस तरह से गीता का अर्थ है, तो तीन तरह से होता है ये श्रद्धा, तीन तरह की, वह भोजन से ही पता लगे, भोजन प्रिय लगता है अच्छा लगता है, अब अच्छा मिले न मिले हाथ की बात नहीं, इस बात भोजन प्रिय होता है, आहार तो सर्वश्रेष्ठ तो बहुत ही प्रिय, आयु सत्य बल आरोग्य सुख प्रेसिश्रेय आहार सात्विक के प्रिय कत्व लगना उसने तीक्ष्ण दुख विदाय आहार राज्य से इष्टा यात्री अमंग गतरसम पोति परिवर्तन कृष्ण चावल भोजन काम से प्रियम, ये प्रिय रिश्ते क्यों लगाया है, ये भोजन करने वाले की रुचि का पता लगा, रुचि निष्ठा कौन सी है उसी साथ संबंध है, उसी सात्विक है कि राजस है कि तामस है, अब पूजा से बता दिया तो पूजा करता ही नहीं तो कहते खाता तो रहेगा नहीं, अगर खाने में रुचि किसकी रहती है किस रहती है उसे सात्विक राज तो उसका पता लगेगा,
तो
वो मिल जाएगी, विचार करेगा तो सात्विक बदल जाएगी, राजसी है वो सात्विक बदल जाएगी, विचार करेगा सात्विक पढ़ेगा ऐसों का संग करेगा और वैसा अभ्यास करेगा तो सात्विक हो जाएगा, मनुष्य को भगवान ने बड़ी भारी स्वतंत्रता दी है, अनाधिकार से बंधे हुए कर्म है उन कर्मों का बंधन काट सकता है एक जन्म में, तो मनुष्य स्वतंत्र है, मन फल भोग नहीं है ये, और जितनी योनियां है वे फल है किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए है, ये योग है, ये है साधन योनि, साधन करने का है ये, इसमें मौका है तुम अपना उन्नति करो, अवनति मत करो, मैं तो कहता हूँ पहला क्या हुआ, पहला कर्म हुआ कि फल हुआ, तो पहले कर्म हुआ तो पहले क्या है, मनुष्य जन्म है, पहले श्री गणेश पुनर्जन्म से होता है और मनुष्य जन्म अंत भी मनुष्य जन्म में होगा, अनंत जन्मों का आरंभ मनुष्य जन्म से, अनंत जन्मों का खात्मा मनुष्य जन्म से, ऐसा मनुष्य जन्म है, इतनी स्वतंत्रता इतनी अलौकिकता है, ऐसा ये कर सकता है,
हाँ जी विक्रम
को उत्तर जो भगवान जरूरत को नहीं, जो पाप कर्म है विरुद्ध कर्म है उसकी विमोचन जरूरत नहीं, उसे त्याज है। जो शास्त्र निषेध कर दिया, संतों ने निषेध कर दिया, वो काम नहीं करना है, वो क्या पूजक हो रहे। अरे कूड़ा कचरा ले दिया, उसमें कांच के टुकड़े कितने हैं, तिनके कितने हैं, उसमें रज्जी कितनी है, उसमें धूल कितनी है, मन वस्तुओं का कट करके वो सामान कितना है, ऐसे खोजना है। त्याज्य चीज है, उसका पूरा जैसे कूड़ा करके इकट्ठा हो गया, झाड़ू दिया, झाड़ू में कांच के टुकड़े कितने हैं, बोध में वो जानना चाहिए त्याग के लिए, केवल त्याग के लिए, उनके बीच में अंतर जानना, अवान्तर जानने की जरूरत नहीं है, उसे त्याग दिए बस, इतना काफी है। अब कूड़ा कचरा है, इसमें तिनके कितने हैं, इसमें कांच के टुकड़े कितने हैं, इसमें कंकर कितने हैं, रेता कितना है, और ये जो कपड़े हैं इनका कट करके फूस इकट्ठा वो कितना है, वो करता नहीं है, ये फेंक रहे क्या नहीं करेगा, ऐसे उसमें करने की जरूरत नहीं, इसको विमोचन करने की आवश्यकता नहीं है। त्याग की ग्रहण और त्याग दोनों में करना पड़ेगा, कर्म होने से अकर्म हो जाए, कर्म लागू ना हो उनका बना, इससे सर्वे समारंभा काम संकल्प बनता, ज्ञान अग्नि दग्ध कर मानव तमाम पंडित बुझा, ज्ञान रूपी अग्नि से सब कर्म दग्ध हो जाते, वे फल देने के लायक नहीं होते। एक लोहे के ऊपर चिपकाया हुआ कागज है, अगर लोहे तपेगा तो कागज जल जाएगा, बट अक्षर पढ़ लू पढ़ने में आएगा, मैं उठा नहीं सकूं कागज को, उठाओ क्या, उठाओ कैसे, जल जाएगा। इस तरह से आपके कर्मों के फल आते हैं, उसको अलग करके देखो तो आप टिकेगा नहीं, जल जाएगा सभी, अकर्म हो जाएंगे। तो कर्मों को अकर्म बनाने की शक्ति मनुष्य मात्र में है, और अकर्म बनाने के लिए ये प्रकरण है, कोई कर्म लागू नहीं हो, पाप तो करेगा नहीं, पुण्य करेगा निष्काम भाव से करेगा, वो लागू होगा नहीं, और प्राप्ति का फल देर नष्ट हो जाएगा तो बंधन होगा ही नहीं। इस वास्तव प्रणाम किया है, पांच श्लोकों में जाते हैं, कर्म अकर्म भी है, कर्मों का बहुत कम है, विकर्मों को तो छोड़ दिया, वो करना ही नहीं है, इस बात उसको यही नहीं, किन कर्म किन कर्म थी कभी उत्तर से मोहित था, इसमें बड़े बड़े पंडित मोहित हो जाते हैं। तो कर्म अकर्म ही आने के, कर्म अकर्म एक आधारी है, बीच में बोधव्यम में विकर्म दे दिया, कर्मणों ही बोधव्यम विकर्म, बोधव्य से विकर्म अकर्म बोधव्यम गहना कर्म लोग हो गए, छोड़ में शुरू होता है कि मैं कर्म को मिलते हैं, और 32वें पूरा होता है 17 श्लोक है, एवं बहु विधायकी अपेक्षा मुख्य कर्म ज्ञान विद्वान सर्वान एवं ज्ञातवा भी मोक्ष से यहाँ तक, बड़ा सुंदर विषय है। साधक संजीवनी में खूब लिखा अच्छी तरह, और उसमें आप पढ़ो और फिर शंका करो तो बहुत खुलेगा, शंका करने से ग्रंथ खुलता है, विषय खुलता है, सब स्पष्ट हो जाता है, समझ आ जाता है।
अपने प्रिय के वियोग में भी प्रारब्ध बाध्य करता है,
प्रिय के वियोग में प्रारब्ध बाध्य करता है, प्रिय के वियोग बाध्य तो होता ही है, तो वियोग वियोग होता है, प्रारब्ध के कारण से तो संयोग वियोग होता है, प्रारब्ध का फल देता है। संत महात्मा की प्रारब्ध तो रहता है, संचित नष्ट हो जाता है, प्रारब्ध कारण है, वियोग में प्रारब्ध भी कारण है, अभार का विचार भी कारण है, संग भी कारण है, पुस्तक भी कारण है, जैसा अध्ययन करेगा उस संस्कार होगा। प्रारब्ध भी है, संचित भी है, क्रियमाण भी है, शास्त्र भी है और संघ भी है, ये सबका स्वरूप है। विचार पूर्व करना क्या चाहिए, करना नहीं क्या नहीं चाहिए, ये विचार रखना अपने सामने, कार्य कार्य व्यवस्थित हो फिर ठीक बन जाएगा। हाथ सब का रहता है, संचित का, क्रियमाण का, प्राप्त का हाथ रहता, बाध्य नहीं करते, प्राप्त रूप से बाध्य करता है, पर विचार संग है ये प्रधान है, इसे बदल जाता है एकदम, भाव बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं, मनुष्य का जीवन बदल जाता है। इस बात से कुसंग नहीं करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, और का और हो जाए, मनुष्य बदल जाए, विचित हो जाता है, वर्तमान में विलक्षण अवस्था हो जाती है सत्संग करने से। ऐसे कुसंग से बहुत नुकसान होता है, सत्संग से बड़ा लाभ होता है। मैं तो सत्संग कहता हूं कि एक तो आदमी कमा कर धनी बनता है, अरे एक गोद जरा जाए उसको क्या जोर आया, कल कंधा लखपति, तो सत्संग असली मिल जाए तो समझना चाहिए अब गोद गए, मुफ्त में बता में बता, गोद ही तब लाभ होता है। सोच समझ कर इतना जल्दी नहीं कर सकते थे, सत्संग से बहुत जल्दी लाभ, विशेष लाभ होता है, अलौकिक लाभ होता है, चिंता फिक्र तो मिट ही जाते हैं। हमने कई आदमियों को देखा है, कई भाइयों को बहनों को देखा है, बड़ी चिंता बड़ा रोग सत्संग करते ही मिट जाते, चिंता भय उद्वेग हलचल मिट जाते। प्रत्यक्ष आवगन प्रत्यक्ष फल हमने देखा है, हमने अपने पर देखा है, औरों पर देखा है, बहुत लाभ होता है। सत्संग और नाम जप की बहुत महिमा आई है, शास्त्रों में, संतों की वाणी में, वेदों में, पुराणों में, स्मृतियों में, जगह जगह भगवान नाम की महिमा और सत्संग की, संतों की महिमा, ये दो बहुत आई है, इसे परिवर्तन होता है, लग जाए को सच्चे हृदय से। नाम जप तो हरेक कर सकते हैं, सत्संग हरेक को मिलता है, ठीक सत्संग नहीं मिलता है। पुस्तक पढ़ देते हैं, कथा हो जाती है, सुन देते हैं, सुना देते हैं, पर उसमें गहरे उतर करके समझने वाला समझाने वाले बहुत कम होते, जिज्ञासा ही नहीं होती, जिज्ञासा होती तो वो पूरी नहीं होती, जिज्ञासा असली वस्तु मिले बिना पूरी नहीं, शांत नहीं होती। और जय पर जय पर सत्य सने हो, सोते ही मिलते कुछ संदेह हो, सत्य अगर जिज्ञासा होगी तो उसको सत्संग मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, भगवान ने कैसे मिलेगा, मिलेगा। रामायण आया है कि बड़े भाग्य सत्संग दिखावा, भाग्य से भी सत्संग, तो प्राग के अनुसार सत्संग मिलता है। और दूसरी बात बताई है, कहते हैं पर जय कर सत्य सदे वो सोते ही मिलते, तो अपने इच्छा जोरदार होने से सत्संग मिलता है। और तीसरी बात, अरे हाँ भगवान की कृपा से संत विशुद्ध मिले पर ही चित्वी राम कृपा करके, राम कृपा से सच्ची लगन से और गुरु के प्रावधानिक से ये सत्संग मिलता है। परंतु जो प्राग से संग मिलता है उसका लाभ ज्यादा नहीं ले सकता, लगन से मिलता है वो लाभ ज्यादा लेता है। जितनी भूख होती है अन्न अच्छा लगता है, प्यास ज्यादा होती है उतना जल अच्छा लगता है, ऐसे जिसके सत्संग की इच्छा ज्यादा है वो सत्संग ज्यादा असर करेगा, और बेपरवाह है तो क्या करेगा, एक सहला कर प्राग ने तो काम कर दिया, प्रसंत मिला दिए, अब लाभ ले न लेवे, गाड़ी में बैठे उसी डिब्बे में संत बैठे हैं तो प्राग का काम है, संत बैठा करा दिया, तो आप लाभ लो मतलब। तो मुख्य बात अपनी जिज्ञासा, अपनी इच्छा, अपनी लालसा, वो मुख्य सबसे नया प्राग बन जाता है, प्राग नया बन जाता है। तो मनुष्य ही आदि और अंत है, तो आदि भी यही जन्म है, अंत भी इसी जन्म में है, इसमें बहुत विलक्षणता है ये बात। और बोलो, गीता पढ़े तो बहुत विचित्र फायदा होता है, साधु संजीवनी है, तत्ववेदनी है, ये आजकल की लिखी हुई है ना, तो आजकल की जनता के लिए ये बड़ी उपयोगी है। आजकल की जनता को सामने लेकर रखी हुई है ना, पहले जैसे जैसे समुदाय रहा उसके अनुसार लिखी हुई है, इनसे ज्यादा लाभ होता है। नारायण 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 नारायण।
राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम शुक्ला जी महाराज द्वारा गीता भवन सर्गाश्रम ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 6 जून 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे हुआ। राम।